नमा ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। रामायण पर चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। श्री रामचंद्र जी के जन्म के बाद विश्वामित्र मुनि आगे चलकर उनको ले जाते हैं जहां सिद्ध आश्रम में मारीच और सुबाहु का उद्धार भगवान करते हैं और उसके पहले ताटका का भी वध वो करते हैं। और अब चर्चा हम लोग कल कर रहे थे कि अब सिद्धाश्रम से निकले हैं मिथिला की ओर जाने के लिए। तो मिथिला की ओर जाने के रास्ते में कल हम लोगों ने चर्चा की कि कैसे गंगा के अवतरण की कथा वहाँ पर विश्वामित्र मुनि ने उनको बताई गंगा में। और गंगा का महत्व हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक गोपी हैं गोलोक वृंदावन में और यहाँ पर कैसे उनका अवतरण हुआ, इस ब्रह्मांड में कैसे हुआ, इस पृथ्वी पर कैसे हुआ। कल हमने विस्तार से चर्चा की सगर महाराज के यज्ञ के आधार पर। और गंगा देवी, वैसे तो गंगा देवी जैसे वर्णन पद्म पुराण में किया गया है कि हो सकता है समय आ जाए जब इस पृथ्वी के सारे धूल के कणों को कोई गिन ले, लेकिन गंगा के गुणगान को, गंगा के गुणों को कोई गिन नहीं सकता। विष्णुपदी नाम है इनका क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं और इसीलिए चरणामृत हैं। तो जब गंगा जल ग्रहण किया जाता है या चरणामृत ग्रहण किया जाता है तो ऐसे कहते हैं, ये मंत्र कहा जाता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान के चरणों से निकली हुई विष्णु पादोदकम, उसको जब हम पीते हैं तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये चर्चा हम लोग कल कर रहे थे कैसे भगवान श्री कृष्ण का तरल रूप हैं गंगा देवी, ये भी चर्चा की। गंगा देवी का वर्णन कई स्थानों पर आता है, महाभारत में भी गंगा देवी का वर्णन है, जैसे भीष्म के जन्म के पहले की कथा। तो ये कथा महाभारत में बड़े विस्तार से दी गई है जहाँ गंगा देवी विवाह करती हैं शांतनु महाराज से और फिर एक शर्त पर विवाह करती हैं कि आप कभी कुछ पूछेंगे नहीं मुझसे, कोई प्रश्न नहीं करेंगे, मैं जो भी करूं उस पर आप कोई प्रश्न नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। शांतनु महाराज ने सोचा क्या होगा, दो गुलाब जामुन एक्स्ट्रा खा लेंगे, हम प्रश्न नहीं करेंगे, या ऐसे कुछ सरल चीजें सोची होंगी। पहली संतान हुई, पहला पुत्र हुआ, गंगा ने पुत्र को उठाया, गई और नदी में फेंक दिया। शांतनु महाराज हैरान हो गए, लेकिन वचन दिया था कुछ नहीं पूछेंगे। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये ऐसे कर रहे हैं। फिर अंत में जब आखिरी पुत्र को ही फेंकने के लिए गई तब शांतनु महाराज ने रोक दिया, कहा ये नहीं कर सकते। तो फिर वो थे, आगे चलकर वो भीष्म बने, देवव्रत। तो ये कथा महाभारत में विस्तार से आती है। तो गंगा देवी का वहां पर भी वर्णन है कैसे उन्होंने इन आठ वसुओं का उद्धार किया। दरअसल वो मार नहीं रही थी, वो उद्धार कर रही थी, क्योंकि इन आठ वसुओं ने प्रार्थना की थी गंगा देवी से कि हमें जन्म लेना है श्राप के कारण पृथ्वी पर, तो आप बस इतना कर दीजिए, हम ज्यादा समय रहना नहीं चाहते हैं, बस जन्म हो हमें मार दीजिए। और आपसे ही हम जन्म लेंगे, आप मार दीजिएगा ताकि हम अपने स्थान वापस आ सकें, हम ज्यादा समय रहना नहीं चाहते हैं ये शापित मनुष्यों के बीच में। ये जो मनुष्य जीवन है वैसे तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन शास्त्रों में देखा जाता है कि जब भी किसी को श्राप दिया जाता है तो कहा जाता है जाओ पृथ्वी पर मनुष्य बन जाओ और वो व्यक्ति कहता है नहीं 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 मनुष्य नहीं बनना है मुझे, देवता कहते हैं। तो ऐसे इन वसुओं का उद्धार किया था, इसका बड़ा इतिहास है, उन्होंने अपराध किया था और श्राप मिला था इत्यादि। तो ऐसे गंगा का वर्णन आता है, गंगा देवी का वाहन है, कोई जानते गंगा देवी का वाहन क्या है? मगरमच्छ, तो घड़ियाल या मगरमच्छ, तो उस पर वो सवारी करती हैं। तो ये समय या काल को प्रदर्शित करता है, जैसे काल के मुख में एक बार चले जाने से फिर कोई निकल नहीं सकता, जैसे घड़ियाल के मुख में कोई चला जाए या मगरमच्छ के, तो बड़ा मुश्किल होता है बाहर आना। और ये कहते हैं कि गंगा देवी कैसे इस पर जब सवारी करती हैं, तो ये दर्शाती हैं कि कैसे इस घड़ियाल रूपी काल को गंगा देवी की कृपा से हम बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं, या ये जो मोह है या मृत्यु है जो काल से प्रकट होते हैं, तो उस पर कैसे हम गंगा के प्रभाव से उस पर विजय पा सकते हैं, अर्थात अपनी मृत्यु पर विजय पा सकते हैं, मोह पर विजय पा सकते हैं। तो ऐसे गंगा देवी का वर्णन करके फिर अगले दिन गंगा पार की विश्वामित्र मुनि, अन्य सारे साधुओं ने और रामचंद्र जी ने इत्यादि। आ रहे हैं, अच्छा थैंक यू। सो गंगा जी, हाँ प्रभु जी ने याद दिलाया कि वो शिव जी का क्या हुआ था, हाँ वो रह गया है ना बात, हमें लगा हमने पूरी कर दी है वो बात। अच्छा, तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गंगा जी प्रकट हुई, भगीरथ महाराज किस किस ने तपस्या की थी, सगर महाराज ने तपस्या की, अंशुमन ने की, दिलीप महाराज ने की और फिर भगीरथ महाराज ने की। गंगा जी तैयार हो गई, शिव जी से प्रार्थना की, शिव जी तैयार हो गए, लेकिन दोनों में थोड़ा सा हंसी मजाक हुआ और गंगा को उन्होंने अपनी जटाओं में धारण कर लिया, गंगा उन्हीं में रह गई। और फिर से एक वर्ष तक भगीरथ महाराज ने शिव जी की प्रार्थना की कि ये क्या कर दिया आपने, इतनी मेहनत की थी। तो फिर शिव जी प्रसन्न हुए और एक वर्ष के बाद फिर गंगा को उन्होंने पृथ्वी पर आने दिया। तो उस समय गंगा 7 अलग अलग धाराओं में विभक्त होकर प्रकट हुई थी। तो 7 अलग अलग धाराओं के अलग अलग नाम भी मान जाते हैं, जैसे अलकनंदा कहते हैं, गंगा कहते हैं इत्यादि, और भागीरथी। तो एक धारा जो भगीरथ महाराज के पीछे पीछे चली उन 60,000 सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए, जिन्हें कपिल, भगवान कपिल ने केवल दृष्टि मात्र से जलाकर राख कर दिया था। तो भगीरथ महाराज के पीछे पीछे चली और वो भागीरथी कहलाई। तो जब ऐसे पीछे पीछे जा रही थी तो भगीरथ महाराज आगे आगे चल रहे हैं, गंगा की ये धारा पीछे चल रही है, चलते चलते एक स्थान पर आए जहां जानहू ऋषि का आश्रम था और जानहू ऋषि वहां बैठे तपस्या में मग्न थे, ध्यान मग्न थे। और भगीरथ महाराज वहां से पास से निकले और गंगा भी निकली और गंगा ने पूरे आश्रम को भर दिया पानी से। तो जैसे ही जानू ऋषि ध्यान मग्न थे, अचानक जल जल हो गया, देखा उन्होंने तो बड़ा क्रोध आया कि ये क्या हुआ। तो इतने क्रोध में आ गए कि वो पूरी गंगा को पी गए। भगीरथ महाराज का तो भाग्य क्या कहना ही क्या है, पहले शिवजी ने गायब कर दिया, अब जा रहे थे तो जानू ऋषि पी गए पूरी गंगा। तो अरे अब क्या होगा, तो फिर भगीरथ महाराज को उनसे भी प्रार्थना करने लग पड़ेगी, अरे छोड़िए ऐसे, हम उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। तो फिर अपने कान से उन्होंने, जानहू ऋषि ने उसको प्रकट किया। तो क्योंकि जानहू ऋषि के कान से वो प्रकट हुई, इसीलिए जाह्नवी कहलाती हैं, गंगा देवी का एक नाम है जाह्नवी। तो ऐसे फिर उनके पीछे पीछे चलते हुए फिर अंततः उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सगर महाराज के पुत्रों को जलाया था अपनी दृष्टि से, और फिर गंगा के जल से उनका उद्धार किया। तो गंगा के जल से उद्धार होता है, गंगा पूजा की जाती है। आज भी भारत में प्रथा है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसका जो कर्मकांड इत्यादि कर्म क्रियाएं करने के बाद पिंडदान उनका, फिर गंगा पूजा की जाती है। इसका वर्णन महाभारत में भी आता है, स्वयं श्री कृष्ण ने किया। जब महाभारत का युद्ध हो गया तो महाभारत के युद्ध में सब मारे गए, तो फिर सारे तो रिश्तेदार ही थे, तो युधिष्ठिर इत्यादि ने गंगा पूजा की जिसमें श्री कृष्ण ने भी भाग लिया। तो ऐसे ये गंगा का महत्व है। तो अब आगे चले श्री रामचंद्र, और चलते चलते एक बहुत सुंदर नगरी में आए जिसका नाम था विशाला नगरी, और वहाँ बड़ी सुंदर नगरी थी। रामचंद्र जी ने पूछा, ये इतनी सुंदर नगरी किसकी है? तो विश्वामित्र मुनि ने बताया कि है तो इक्ष्वाकु कुल वालों की ही, इक्ष्वाकु कुल में ही एक राजा हुए विशाला, और उन्होंने ये नगरी बनाई थी और इसीलिए इस नगरी का नाम विशाला है। लेकिन इस स्थान का एक बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? तो कहने लगे कि इस स्थान का महत्व है कि यहाँ किसी ने तपस्या की थी, और तपस्या किसने की थी ये बताने से पहले वो उसके पूर्व या पृष्ठभूमि उसकी बताते हैं कि क्या किसने तपस्या की है। क्या हो रहा है इसमें? चार्ज नहीं हो, बाद में कर लें। तो उस समय उन्होंने और एक इतिहास बताया कि जब तपस्या का तो बताएंगे कि किसने वहां तपस्या की, तो बताने लगे क्यों तपस्या की जिस भी व्यक्ति ने वहां की, तो उसका इतिहास बताने के लिए उन्होंने संक्षेप में समुद्र मंथन की लीला को कहा। समुद्र मंथन की लीला हम लोग श्रीमद् भागवत में बड़े विस्तार से पढ़ते हैं, महाभारत में आती है, रामायण में आती है। तो उन्होंने उस लीला को कहा, समुद्र मंथन की लीला को, कि कैसे ये लीला हुई थी। तो बड़े विस्तार से है, आप लोग कई बार ये लीला सुन चुके हैं इसीलिए इसको विस्तार से नहीं, बड़े संक्षेप में जो इससे सीखने लायक हमारे लिए उपदेश हैं उनको ही कहेंगे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण लीला है। आप सब जानते हैं कि कैसे देवासुर संग्राम हुआ, देवता गए भगवान के पास हताश होकर, भगवान ने कहा संधि कर लो, इस समय वो बड़े शक्तिशाली हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ संधि करो और तैयार हो जाओ समुद्र मंथन करने के लिए। तो फिर सब बलि महाराज के पास आए, समुद्र मंथन की तैयारी हुई, और अब पर्वत को उठाकर ले जाना था। पर्वत उठाने लगे तो कई देवता और कई दैत्य उनमें दबकर मर गए, उठाकर नहीं ले जा पाए। फिर भगवान आए अजीत के रूप में, गरुड़ पर सवार होकर उन्होंने उस पर्वत को गरुड़ जी की पीठ पर रखा और समुद्र तक ले गए। और फिर जब पहुंचे, मंथन प्रारंभ होना था, तो गरुड़ जी को कहा आप जाइए वापस, क्योंकि मंथन के लिए वासुकी को रस्सी बनाना था, और अगर गरुड़ जी रहते तो वासुकी वहां डर के मारे आते नहीं। तो गरुड़ जी चले गए। तो इस लीला में बहुत से हमने बड़े सुंदर सुंदर सिद्धांत यहां पर देखे हैं कि जब मंथन प्रारंभ हुआ तो भगवान ने सबसे पहले कहा कि मैं वासुकी के मुख को पकड़ूंगा, मुख की ओर। तो खुद चले गए भगवान मुख पकड़ने के लिए। तो क्यों कहा भगवान ने ऐसा? भगवान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भगवान अपने भक्तों से, अपनी संतानों से प्रेम करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जो भी कष्ट होना है वो मैं ले लेता हूं, इन लोगों को कष्ट ना हो, इसीलिए वो स्वयं चले गए मुख पकड़ने के लिए। क्योंकि जब मंथन होगा तो वासुकी के मुख से अग्नि निकलेगी, विष निकलेगा, तो इसको मैं ले लूंगा, ये भगवान का प्रेम है। लेकिन असुर इस प्रेम को समझ नहीं पाते, भगवान के प्रेम को असुर नहीं समझ पाते। तो असुरों ने कहा नहीं नहीं, हम मुख के हिस्से पर खड़े होंगे। भगवान ने कहा ठीक है, आप खड़े हो जाइए। तो फिर प्रश्न आता है कि अगर भगवान सही में प्रेम करते हैं तो असुरों को मना कर देना चाहिए था कि नहीं, तुम्हें कष्ट होगा, तुम नहीं खड़े हो, मैं खड़ा होऊंगा। तो भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान किसी भी जीव के स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते। भगवान ने दी है स्वतंत्रता, लेकिन वो कभी छीनते नहीं है। वो हमें चुनाव करने की शक्ति देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं कि आप मुझसे प्रेम अपनी इच्छा से करिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप जहां हैं वहां सुखी रहिए। अगर आपको लगता है कि आप सुखी रह सकते, भगवान बाधा नहीं डालते स्वतंत्रता में जीव की। तो इसीलिए उन्होंने ये करने दिया, समुद्र मंथन हुआ और बहुत सारी चीजें उसमें से निकली, जहर निकला और फिर उस जहर को शिव जी ने पी लिया। शिव जी ने जहर कैसे पिया? अन्य स्थानों पर वर्णन है कि स्वयं शिव जी कहते हैं कि ये जो विष था ये मैं भगवान की कृपा से पी पाया। तो शिव जी ने ये जो विषपान किया है जिससे शिव जी नीलकंठ के रूप में प्रसिद्ध हुए, शिव जी स्वयं कहते हैं, एक नहीं दो स्थानों पर, तीन स्थानों पर वो कहते हैं कि केवल भगवान की कृपा से, मैंने जाने से पहले प्रार्थना की भगवान से और उनकी कृपा से मैं इस विष को ले पाया। तो ऐसे उन्होंने विष पी, और विष पीने का कारण क्या था शिव जी के? विष पीने का पहला कारण था कि उन्होंने देखा कि ये सब लोग इस समय खतरे में हैं और शिव जी चाहते थे कि मैं खतरे से बचाऊं। दूसरा कारण शिव जी के विष पीने का था कि उन्होंने सोचा कि मेरा कर्तव्य है इस समय, ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए। और साथ ही साथ वो सोच रहे थे कि इससे मैं भगवान हरि को प्रसन्न करूंगा, इसलिए उन्होंने इस विष का पान किया। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक भी इसी तरह हैं, क्योंकि इस आंदोलन के संस्थापक भी इसी तरह हैं। श्रील प्रभुपाद ने विष पिया हम सबको ये कृष्ण भावना का अमृत देने के लिए, हम सबकी रक्षा करने के लिए। एक भक्त के रूप में, कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्य को मानते हुए और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रभुपाद ने जहर पिया। कौन सा जहर पिया प्रभुपाद ने? शिव जी ने एक बार पिया और नीलकंठ के रूप में प्रसिद्ध हो गए। प्रभुपाद ने बारंबार पिया, हर कष्ट को झेला इस संस्था को बनाने के लिए। 70 साल की उम्र में अमेरिका जैसे देश में जाकर अकेले, कोई सहारा नहीं, कोई धन नहीं, विष पीने के बराबरी है, प्रभुपाद ने लिया इस संस्था को स्थापित करने के लिए, हम सबको कृष्ण भावना का अमृत देने के लिए। फिर वहां पर अकेले रहना, वृद्ध अवस्था में संस्था को बनाना एक साल बाद, फिर ऐसे ऐसे लोगों को कृष्ण भक्ति सिखाना जिन्होंने बचपन से कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, उनको कृष्ण भक्त बनाना बहुत कठिन कार्य है। आज जितने प्रचारक है वो इस सबको देख रहे हैं कि विदेश में जाकर प्रचार करना बहुत कठिन है, प्रभुपाद ने किया, इतने सारे लोगों को भक्त बनाया। तो इसीलिए जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो यहां हम लोग देखते हैं कि शिव जी ने भी विषपान किया रक्षा करने के लिए, और फिर जो समुद्र मंथन हुआ उससे बहुत सारी चीजें आई। अभी कुछ समय पहले रविवार के कार्यक्रम में जब हम दशावतार की कथा पर चर्चा कर रहे थे, 10 अवतारों की, तो ये कथा बड़ी विस्तार से हमने कही थी, इसीलिए अब फिर से उसको पुनः दोहरा नहीं रहे, बड़े संक्षेप में आपको बता रहे हैं। और जैसे हमने उस समय भी चर्चा की थी कि दरअसल ये जो समुद्र मंथन है ये हमारी चेतना के मंथन की आवश्यकता को हमें बताता है, कि कैसे चेतना का मंथन बहुत आवश्यक है। और चेतना का जब मंथन होता है तो जैसे पहले जहर निकला लेकिन अंत में अमृत निकलता है, इसी तरह जब हम चेतना का मंथन करते हैं तो हो सकता है कि पहले कुछ कष्ट हो इस जगत के, लेकिन अंततः भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होती है। और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज हम देखते हैं कि हर अवस्था में जो देवता थे वो भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित थे। जब उनसे पर्वत नहीं उठाया गया, भगवान को पुकारा उन्होंने। जब वो पर्वत को मंथन करने का प्रयास कर रहे थे पर्वत के द्वारा समुद्र को, और पर्वत नीचे जाने लगा, उन्होंने भगवान की ओर देखा, भगवान ने और एक रूप ले लिया। फिर जब बहुत समय बाद जब मंथन करने के बाद विष निकला, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, हलाहल विष सब जगह है, उन्होंने भगवान की ओर देखा, क्या करें। फिर जब अंत में अमृत आया और वो अमृत का जो पात्र था उसको असुर चुरा कर ले गए, दैत्य चुरा कर ले गए, फिर देवता भगवान की ओर देख रहे, अब क्या करें। हर अवस्था में भगवान पर आश्रित हैं, इसीलिए उन्हें सुर कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं। वे जानते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे क्योंकि हम पूर्ण रूप से उनको समर्पित हैं। तो देवताओं में और सुरों में, जब ये देवताओं में और असुरों में जब ये बात ये चल रहा था, तो हम लोग देखते हैं कार्य एक था, स्थान एक था। जो लोग कार्य कर रहे थे मंथन, वो एक ही कार्य था, स्थान भी वही था, समय भी था, वही समय था, लेकिन फिर भी उनका उद्देश्य अलग अलग था। दोनों का, देवताओं का उद्देश्य अलग था और दैत्यों का भी उद्देश्य अलग था, और इसीलिए उन्हें अलग अलग फल प्राप्त हुए। उद्देश्य क्या था, एक दृष्टि से देखा जाए तो उद्देश्य वही था, दोनों अमृत चाहते थे लेकिन गलत भाव में। एक चाहते थे ताकि वो भगवान की सेवा कर सकें, और दूसरे चाहते थे ताकि वो इस ब्रह्मांड पर नियंत्रण कर सकें, तो इसीलिए गलत अलग अलग उनका गति भी हुई। तो ऐसे ये कथा बताई, और फिर ये कथा बताकर वो कहते हैं कि जब दैत्य हार गए इस समुद्र मंथन के बाद, अमृत प्राप्त हो गया, देवताओं को मोहिनी अवतार भगवान ने लिया, और फिर मोहिनी अवतार ने धोखे से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, तो फिर युद्ध हुआ और दैत्य हार गए। तो जब दैत्य बहुत बुरी तरह हार गए तो उनकी जो माता थी दीति, वो बड़ी दुखी हो गई, और उन्होंने कश्यप मुनि से कहा कि बहुत दुखी हूं और मुझे अब आशीर्वाद दीजिए कि मैं जाकर घोर तपस्या करने चाहती हूं, जिससे ऐसे पुत्र को प्राप्त करूं जो इंद्र का वध कर सके। कश्यप मुनि दोनों के पिता हैं, अदिति और दीति दोनों उनकी पत्नी हैं, और एक से आदित्य आते हैं, एक से दैत्य आते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है तपस्या करो, जाओ तपस्या करो, लेकिन एक शर्त है। तपस्या का उन्होंने पूरा विधान बताया कैसे तपस्या करनी है, लेकिन ये बताया कि ये तपस्या करते हुए कभी भी अशुद्धता मन में नहीं आनी चाहिए, ये अशुद्धता नहीं आए शरीर में, अर्थात उन्होंने नियम बताए क्या क्या करना चाहिए, तो कभी भी ये नियम नहीं टूटना चाहिए। उसने कहा ठीक है, तो बहुत लंबे समय तक उसको करनी थी। तो दीति उस स्थान पर जहां इस समय रामचंद्र जी थे, उस स्थान पर तपस्या करने आई थी ताकि उसको एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो सके जो इंद्र की हत्या करे। अब इंद्र को पता चल गया कि दीति, अब इंद्र की तो क्या है, मासी है, क्या है, अदिति की, अदिति की बहन है। तो इंद्र को पता चल गया कि दीति जा रही है एक ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए जो मुझे मारे, तो इंद्र ने क्या किया, इंद्र भी उस स्थान पर आए जहां दीति तपस्या कर रही थी और बड़ी सेवा की उनकी, दीति की, रोज उनके लिए कुछ लाना, फल लाना, फूल लाना, जो भी उनको पूजा के लिए चाहिए सामान लाना, हर चीज में मदद कर रहे हैं। तो दीति बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरा बच्चा, मेरी बहन का बच्चा, लेकिन उनके तो बच्चे के साथ कितना अच्छा कार्य कर रहा है। तो वो बहुत सेवा करने लगे, लेकिन सेवा करने का भाव क्या था, इंद्र इंतजार कर रहे थे। इंद्र जानते थे कि ये तपस्या कर रही हैं एक ऐसे पुत्र को प्राप्त करने के लिए जो मुझे मारने वाला है, और इंद्र उनकी सेवा कर रहे हैं और दीति बड़ी प्रसन्न हो रही है उनकी सेवा से। इंद्र इंतजार कर रहे थे कि कब अवसर मिले इस पुत्र को ही खत्म कर दूं। थैंक यू प्रभु। हम वैसे बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के कथा कह लेते हैं, आवश्यकता नहीं है। आप में से भी कोई लोगों की इच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक की तो अभी बंद कर दीजिए उसको कृपया। तो दीति का इंतजार कर रहे थे कि कब अवसर मिले, तो बड़ी सेवा कर रहे थे, पूरा पूरा दिन उनकी सेवा करते। दीति बड़ी प्रसन्न हो गई और फिर जब प्रायः व्रत पूरा होने वाला था, ये तपस्या उनकी पूरी होने वाली थी, उनके गर्भ में बालक भी था, तो उस समय एक समय ऐसा हुआ कि दीति को थोड़ी सी नींद आ गई संध्या के समय और उसने थोड़ी सी अशुद्धता कर दी। ये जो व्रत था ये ऐसा व्रत था कि जरा भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। कितनी अशुद्धता कर दी उसने, जिस तरफ सिर रखना चाहिए था उस तरफ पांव रख दिया, और उसके जो बाल थे वो उसके पैरों से स्पर्श हो गए, इसको अशुद्ध माना गया। खैर हम लोग इस बात को समझ ही नहीं सकते, हमको तो सोते समय पता ही नहीं होता कौन सा स्थान किधर सर रखना और किधर, जब नींद आई जहां आई वहां लेट जाते हैं ना, फिर बाद में कहीं कभी ऐसा सोचते नहीं किस दिशा में रखना है। वैसे कहा गया है कि किस दिशा में होना चाहिए और विशेष दिशा में रखने से क्या लाभ होता है, इस दिशा में रखने से क्या होता है। तो खैर उन्होंने व्रत का नियम तोड़ दिया और फिर उस समय क्योंकि अशुद्धता आ गई, अवसर देखकर इंद्र उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। इंद्र ने गर्भ में प्रवेश किया ये सोचकर कि इस बालक को मार डालूंगा अंदर। तो इंद्र ने प्रवेश किया और उस बालक के अंदर जाकर उन्होंने 7 टुकड़े कर दिए, बचना नहीं चाहिए, तो एक ऐसे नहीं कि केवल एक काट दिए, काट 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 7 टुकड़े कर दिए। और आश्चर्य यह हुआ कि जब 7 टुकड़े कर दिए और इंद्र खड़े हुए कि हाँ गर्भ में है कि हाँ अब ये मर गया, उस 7 टुकड़े रोने लगे जोर जोर से और दीति उठ गई रोने की आवाज, और वो उसको कह रहे हैं चुप चुप हो जा चुप हो जा, 7 रो रहे। तो अब क्या करे, इंद्र घबरा गए, अब तो पता चल जाएगा। उन्होंने सोचा था चुपचाप जाऊंगा मारूंगा बाहर आ जाऊंगा और दीति उठेंगी और दीति को लगेगा अरे गर्भ गिर गया बस मैं बच जाऊंगा। लेकिन वो 7 टुकड़े काटे, अब रो रहे इंद्र क्या करे अंदर, और तो और उनको उनके और 7 टुकड़े कर दिए, 49 गर्भ के 49 टुकड़े उन्होंने कर दिए और वो सारे टुकड़े रोने लगे क्योंकि ये दीति की तपस्या से प्रकट होने वाले पुत्र थे। तो जब इंद्र कुछ नहीं कर पाए वो बाहर आए और उन्होंने क्षमा मांगी दीति से कि मैंने ऐसा बहुत बड़ा अपराध कर दिया। दीति ने क्षमा कर दिया, पुत्र के समान है उनके, तो दीति ने क्षमा कर दिया कि ठीक है तुमने जो किया तो ठीक है, लेकिन अब एक काम करो, अब ये जो मेरे पुत्र होंगे इनको देवताओं का स्थान देना, ये दैत्य नहीं कहलाए। इंद्र ने कहा बिल्कुल जैसा आप कहें, क्योंकि इंद्र घबरा गए थे मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया क्या होगा, तो इंद्र ने कहा जैसा आप कहें। तो ये 49 मरुत गण बने, उनका नाम दिया गया मरुत, और उनको देवताओं की श्रेणियों में रखा जाता है क्योंकि इंद्र ने ऐसा आशीर्वाद दिया। तो ये लीला उस स्थल पर हुई थी जहां इस समय विश्वामित्र मुनि और रामचंद्र जी थे। तो फिर वहां पर जो राजा थे उस समय के राजा थे सुमति, तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया विश्वामित्र मुनि का, और फिर उन्होंने देखा कि ये 2 बालक बड़े तेजस्वी बालक लग रहे हैं, कौन? तो उन्होंने पूछा कौन है ये 2 बालक आपके साथ चल रहे हैं, मतलब ये लोग सब बड़े बड़े ऋषि मुनि और ये 2 15-16 साल के बालक तो कौन है आपके साथ चल रहे? तो उन्होंने बताया कि ये रामचंद्र जी हैं। उससे पहले इन्होंने कहा कि अब आप आगे जा रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आप जंगलों से होके जाएंगे मिथिला वगैरह, तो मैं आपके साथ सेना भेज देता हूँ, मैं आपको थोड़े अस्त्र शस्त्र देता हूँ, आप लेके जाइए साथ में। तो उस समय विश्वामित्र मुनि ने कहा मैं आपको कुछ बताता हूं अभी अभी क्या हुआ है हमारे आश्रम में। तो उन्होंने फिर बताया कि ये जो दो मेरे साथ चल रहे हैं ना, ये दो ही काफी हैं, कोई सेना की जरूरत नहीं है, इन्होंने अकेले ही पूरे सिद्धाश्रम की रक्षा कर दी, ताटका का वध कर दिया उसके पहले। तो सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर एक दिन रामचंद्र जी रुके वहां, फिर अगले दिन वे लोग चले मिथिला की ओर। तो अब चलते चलते आगे आ गए, बस मिथिला के निकट ही पहुंच गए थे, मिथिला पहुंचने वाले थे हम लोग। जब मिथिला पहुंचेंगे तो बताएंगे कि मिथिला नाम क्यों आया, जनक नाम क्यों है। जनक वैसे सीता देवी के पिता का ही नाम नहीं है, जनक एक पदवी है, तो कैसे ये आई, तो इसका। और फिर वो धनुष का विशेष वर्णन होने वाला है कि वो धनुष कैसे आया। तो जब मिथिला पहुंचेंगे तब करेंगे, अभी तो पहुंचे नहीं है मिथिला। तो अब बस थोड़ा सा दूर थे मिथिला से भगवान, प्राय मान लीजिए कि पहुंच ही गए थे। तो उन्होंने एक आश्रम देखा, आश्रम सूना पड़ा हुआ था। तो रामचंद्र जी ने पूछा कि आश्रम तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन सूना पड़ा हुआ है, आश्रम वासी नहीं दिख रहे हैं कोई भी, खाली आश्रम पड़ा हुआ है, तो ये क्या है। दरअसल वो गौतम ऋषि का आश्रम था जहां रामचंद्र जी पहुंचे थे, और वहां पर उन्हें अहिल्या का उद्धार करना था। तो विश्वामित्र मुनि ने वहां कथा बताई। दरअसल वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, हम लोग बहुत ये जानते हैं कि अहिल्या का उद्धार हुआ, पत्थर बन गई थी, रामचंद्र जी ने स्पर्श किया, लेकिन वाल्मीकि मुनि इसको वर्णन नहीं करते। वाल्मीकि मुनि का वर्णन अलग है, पद्म पुराण और अध्यात्म रामायण का वर्णन अलग है। तो वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि हुआ ये, तो अब विश्वामित्र मुनि वो कथा सुना रहे हैं कि क्या हुआ। बोले हुआ कि यहां पर गौतम ऋषि रहते थे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ, बहुत सुंदर थी, ब्रह्मा जी की पुत्री हैं अहिल्या, तो बहुत सुंदर थी। और अहिल्या और गौतम यहां रहते थे, तो एक समय गौतम ऋषि स्नान के लिए चले गए, और जब वो गए तो उस समय इंद्र वहां पर आए और उन्होंने गौतम ऋषि का रूप ले लिया। और फिर वो गए और अहिल्या से कहा कि संतान उत्पत्ति के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं है, हम जब चाहें कर सकते हैं, और इस समय मैं आपका संग करना चाहता हूं। तो गौतम ऋषि के रूप में कहा, अहिल्या ने स्वीकार किया। लेकिन वर्णन करते हैं वाल्मीकि मुनि कि जब अहिल्या संग करना प्रारंभ किया, अहिल्या जान गई कि गौतम मुनि नहीं है, लेकिन फिर भी अहिल्या रुकी नहीं, और इसी कारण से दोनों को आगे चलकर श्राप मिला। कई बार लोग पूछते हैं कि इंद्र ने धोखा दिया, अहिल्या की क्या गलती थी, अहिल्या को क्यों श्राप दे दिया। वाल्मीकि कहते दोनों की गलती थी, एक की नहीं थी। तो खैर जब ऐसा हुआ और फिर इंद्र जाने लगे वापस, और जब इंद्र जाने लगे छुपकर जा रहे थे, गौतम ऋषि आ गए, उन्होंने देख लिया और अपनी योग सिद्धि से जान गए कि क्या हुआ है, इंद्र ने और अहिल्या ने ये जो पाप कर दिया। तो तुरंत श्राप दिया इंद्र को, इंद्र को भी श्राप दिया, और फिर अंदर गए और अहिल्या को भी श्राप दे दिया। तो श्राप क्या दिया, अगर अध्यात्म रामायण और पद्म पुराण में लिखा है कि उन्होंने श्राप दिया तुम पत्थर हो जाओ, लेकिन वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि कई कई वर्षों तक तुम यहीं रहोगी, बिना कुछ खाए पिए, केवल हवा पर जीवित रहोगी और किसी को दिखाई नहीं दोगी। फिर जब काफी वर्ष के बाद, बहुत लंबे समय के बाद दशरथ नंदन राम आएंगे, तब तुम अपने रूप को पुनः प्राप्त करोगी। तो ये दंड उन्होंने अहिल्या को दिया, अगत से या अध्यात्म रामायण में कहते हैं कि उन्हें पत्थर बना दिया। तो ये हुआ इस कारण से जो उन्होंने पाप किया था। तो उस समय अहिल्या ने वचन लिया कि ठीक है, मैं भगवान श्री राम के चरणों का स्मरण करते हुए यहां पर रहूंगी जितने भी वर्ष, और आपके चरणों का भी, गौतम ऋषि उसके पति हैं, तो आपके चरणों का स्मरण करते हुए मैं यहां पर रहूंगी। तो यहां भक्तों के लिए अहिल्या एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश देती है। क्या निर्देश है कि कभी कभी भक्ति में भक्ति करते हुए भक्तों से अपराध हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, जैसे अहिल्या से हो गया, तो क्या करना चाहिए? और ये स्वाभाविक है, कभी कभी हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो अहिल्या समझाती हैं कि अगर जब भी हम पाप करते हैं तो स्वाभाविक है पापों का फल आने वाला ही है। जैसे अहिल्या को दंड मिला, पापों का फल आने वाला है, लेकिन दो कार्य एक भक्त को करने चाहिए जो यहां अहिल्या ने किए। पहला, नम्र बन जाना चाहिए, टेक अ हम्बल पोजीशन। अगर हमने कुछ गलत किया है, नहीं भी किया है, अगर हमारे ऊपर आरोप लग रहा है, नम्र हो जाइए सबसे पहले। और दूसरी चीज, जैसे यहां स्वीकार किया अहिल्या ने, ठीक है आप जो कहेंगे, हजार वर्ष तक रहना, ठीक है हजार वर्ष तक रहेंगे यहां पर। और दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक भक्त को दृढ़ता का व्रत लेना चाहिए। दृढ़ता का व्रत मतलब फिर उस समय से दृढ़ हो जाना चाहिए, भक्ति में व्रत ले लेना चाहिए। ये दो चीजें उसको पापमय फल से बाहर आने में मदद करेंगी, जैसे अहिल्या को किया। तो क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले नम्र हो जाए, स्वीकार करें, ठीक है या तो हमारे कर्मों का फल है अभी का या पूर्व जन्म का, कभी का तो कर्मों का फल होगा, नहीं तो अचानक मेरे साथ ऐसा नहीं होता। और दूसरा, हमें दृढ़ता का व्रत लेना चाहिए, दृढ़ता से तपस्या करते हुए जीवन बिताना चाहिए। तो ऐसे अहिल्या ने वहां पर किया, क्योंकि दृढ़ता बहुत आवश्यक है। दृढ़ता से मन वश में होता है। अगर हम मन को वश में करना चाहते हैं तो फिर हमें दृढ़ता लानी बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के हृदय में, जीवन में दृढ़ता नहीं है, दृढ़ व्रत नहीं है, वो मन को वश में नहीं कर सकता। मन को वश में करने के लिए बड़ी दृढ़ता चाहिए, क्योंकि मन बड़ा ढीठ है। अर्जुन कहते हैं ना कि मैं चाहे तो ये बहने वाली हवा को वश में कर सकता हूं, लेकिन इस मन को नहीं। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। तो वो इतना ढीठ है, उसके लिए हमें दृढ़ बनना आवश्यक है। इसीलिए दृढ़ता मन को वश में करने में मदद करती है। तो ऐसे हमें अहिल्या से ये सीखना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात हम लोग सीखते हैं कि जहां कहा गया कि अहिल्या, तो अब जब रामचंद्र जी को ये सुना तो रामचंद्र जी से कहा प्रवेश कीजिए। रामचंद्र जी ने प्रवेश किया। अध्यात्म रामायण में कहा गया रामचंद्र जी ने स्पर्श किया उस पत्थर को, पद्म पुराण भी कहता है, लेकिन यहां कहा कि केवल प्रवेश किया। और जैसे ही प्रवेश किया उद्धार हो गया अहिल्या का, और अहिल्या प्रकट हो गई वहां पर, और अहिल्या बड़ी प्रसन्न हुई। और लेकिन अहिल्या को देखकर राम और लक्ष्मण ने उनके चरण स्पर्श किए। उद्धार उन्होंने किया लेकिन फिर भी चरण स्पर्श किए, और फिर आगे चलकर अहिल्या ने उनके चरणों को धोया इत्यादि, उनका स्वागत किया। तो यहां हम लोग एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और सीखते हैं कि अगर हमारा पत्थर जैसा हृदय हमें पिघलाना है तो रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श होना चाहिए। और रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श होने का अर्थ क्या है हमारे हृदय में? अहिल्या को तो उन्होंने उनके उस समय थे गए और स्पर्श कर दिया, हमारे हृदय को कैसे स्पर्श करेंगे? हमारे हृदय को स्पर्श करने के लिए अर्थ ये है कि उनकी शिक्षाओं को हमें जीवन में ग्रहण करना है। हमारा ये पत्थर का हृदय तभी पिघलेगा जब हम उनकी द्वारा दी गई शिक्षाओं को जीवन में स्वीकार करते हैं, उनके द्वारा दिए गए पथ पर चलते हैं, उनके भक्तों की शरण ग्रहण करते हैं, तब हमारा ये पत्थर का हृदय पिघल सकता है। तो ऐसे ये अहिल्या के प्रसंग में हम लोग सीखते हैं। और फिर अहिल्या ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की। अब जब अहिल्या का उद्धार हो गया, अहिल्या प्रकट हो गई अपने रूप में, और गौतम ऋषि भी आए वहां पर उस समय पर, और फिर उस समय अहिल्या देवी ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की भगवान को। अहिल्या देवी कहती हैं कि मैं तो एक साधारण स्त्री हूं यहां पर, और स्त्रियों को तो हमेशा संरक्षण चाहिए होता है, लेकिन आपसे अच्छा संरक्षण इस जगत में किसी कोई दे नहीं सकता, आपके चरण कमल ऐसे हैं। और वो फिर कहती हैं कि जब मुझे श्राप मिला था गौतम ऋषि का, तो मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ था, लेकिन आज मुझे वो आशीर्वाद लग रहा है। गौतम ऋषि का, मेरे पति का जो श्राप है, वो आज आशीर्वाद लग रहा है क्योंकि आपके दर्शन हुए। तो अर्थ ये है कि अगर भक्त हमें श्राप भी दे देते हैं, वो भी हमारे लिए वरदान है। और फिर वो कहती हैं कि आपके ये चरण कमल ये गंगा तक को पावन करते हैं, और आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आपके ये चरण कमल सदैव मेरे हृदय में स्थापित रहें, इतनी मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। तो ऐसे कहकर उन्होंने प्रार्थनाएं की, भगवान ने उनकी प्रार्थना को, उनके स्वागत को स्वीकार किया, और फिर भगवान वहां से आगे मिथिला के लिए चले। तो अब मिथिला में वो प्रवेश करेंगे, तो कल मिथिला के इतिहास को कहेंगे, धनुष के इतिहास को कहेंगे, सीता देवी के जन्म की कथा को कहेंगे, सीता देवी के इतिहास को जैसे समय होगा उसके अनुसार, और फिर आगे चलकर सीता स्वयंवर पर चर्चा होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी कुछ पूछना चाहते हैं? यस प्रभु। बहुत अच्छा प्रश्न है। एलिवेटेड डिवोटीज क्यों ये प्रार्थना करते हैं? ठीक है, हमारा तो है ही पत्थर, हम तो मानते नहीं है कि पत्थर है, लेकिन है, और वो लोग कहते हैं उनका है नहीं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि है, तो वो लोग क्यों ऐसी प्रार्थना करते हैं? ये प्रार्थना है क्योंकि भगवान से प्रेम बढ़ता जाता है। ऐसी अवस्था में जहां अभी हमारी भक्ति परिपक्व नहीं हुई है, और ऐसी अवस्था में जहां भक्ति की परिपक्वता हो चुकी है, दोनों में भक्ति के साधन, भक्ति के मार्ग वही रहते हैं, केवल रस बदल जाता है, आनंद बदल जाता है। जैसे भगवान की कथा वो व्यक्ति भी सुनता है जो जिसका हृदय भौतिक कामनाओं से भरा हुआ है, और दूसरी ओर बड़े वैष्णव भी सुनते हैं उन कथाओं को, तो कथा का लाभ क्या होता है? दोनों कथा सुन रहे हैं, लेकिन दोनों के ऊपर प्रभाव अलग अलग है। गोपियां क्या कहती हैं? तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, तो वो भी कथा सुनती हैं, और कथा हम लोग भी सुनते हैं। दोनों में अंतर क्या है? रस का। प्रभुपाद इसको समझाया करते थे, जैसे एक आम होता है, तो कच्चा आम और पका हुआ आम दोनों आम हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? रस का। जब वो पक जाता है तो फिर रस आ जाता है। तो परिपक्व अवस्था में भी वे लोग कहते हैं कि आपके चरण रखे, इसलिए नहीं कि उनका हृदय पत्थर है, इसलिए कि वो पत्थर निकल चुका है और अब असली आनंद को स्वाद करना चाहते हैं। जब तक वो पत्थर है, हम भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं, भगवान के नाम का आस्वादन नहीं कर पाते। तो शुरुआत की अवस्था में जब परिपक्व नहीं हुए हैं, वो चीजें हमें परिपक्वता की ओर ले जाती हैं, और परिपक्व अवस्था में वही चीजें हमें आनंद देती हैं। जैसे आज हम जब जप करते हैं भगवान के नाम का, तो हमारे लिए वो हर एक जप पर आंखों में आंसू नहीं है, हर एक जप किया, पूरा 16 माला होने के बाद भी पता नहीं चलता है कि क्या हुआ। लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्त जिनका हृदय शुद्ध हो चुका है, कहना चाहिए कि उनको जप करने की आवश्यकता, जैसे हरिदास ठाकुर, भगवान ने स्वयं कहा तुम्हें जप करने की अब जरूरत नहीं है, हो गया लेकिन उन्होंने किया तो क्यों किया उन्होंने, जब उनको तो आवश्यकता, हम लोग कर रहे हैं हमारे हृदय की शुद्धिकरण के लिए, उनका तो हृदय शुद्ध था क्योंकि वो हर एक नाम में जो रस और आनंद ले रहे हैं वो हम लोग अनुभव नहीं कर सकते, हम लोग सोच कल्पना नहीं कर सकते कि क्या आनंद है। तो इसीलिए गोपियां भी कहती हैं कि आपके, हम कहते हैं कि आपके चरण कम हमारे हृदय में आए ताकि ये पत्थर टूट जाए, हृदय शुद्ध हो, हम आपके महत्व को समझ सकें। गोपियां कहती हैं कि इसको रखिए हमारे हृदय में ताकि जो इनके स्पर्श का आनंद है उसको हम ले सकें। तो अंतर है रस का, अंतर है आनंद का, अंतर है भाव का, ठीक है। हाँ जी,
हम भक्ति के लिए दृढ़ता कैसे ला सकते हैं?
हम भक्ति के लिए दृढ़ता कैसे ला सकते हैं, दृढ़ कैसे हो सकते हैं? तो भक्ति में दृढ़ता को लाने के लिए पहली चीज है कि हम भक्ति के सही मार्ग पर हों। हमें आचार्यों के द्वारा दिया गया मार्ग, ये पहला कार्य, अगर हम गलत मार्ग पर हैं तो दृढ़ता आ ही नहीं सकती। तो इसीलिए सबसे पहले सही मार्ग पर हों। दूसरा चीज, दृढ़ भक्तों का संग करें। ये दृढ़ता छुआछूत की बीमारी की तरह है, तो जब किसी दृढ़ भक्त के साथ रहते हैं तो अपने आप वो दृढ़ता आती है देखकर। जैसे आज भी जब हम लोग श्रील प्रभुपाद के वीडियोस को देखते हैं, अब तो उनका हम लोग वप्पू का संग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन केवल वीडियोस को देखते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी वो एनर्जी आ जाती, हम लोग को भी प्रचार करना चाहिए, है ना, ये संग का असर है। तो दृढ़ भक्तों का संग करें, पहला मार्ग सही हो, दूसरा दृढ़ भक्तों का संग करें, और तीसरा गंभीरता लाने का प्रयास करें। दृढ़ता का अर्थ क्या है? थोड़ी सी तपस्या के लिए तैयार रहें, जीवन को बदलने के लिए तैयार रहें। जैसे प्रभुपाद लिखते उपदेशामृत में कि कम से कम एकादशी इत्यादि पर हमें व्रत कर लेना चाहिए, जन्माष्टमी या भगवान के आविर्भाव दिवसों पर व्रत कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत उसको प्रारंभ करें, अर्थात थोड़ी सी तपस्या प्रारंभ करें। तो ऐसे दृढ़ता लाने के लिए थोड़ी सी तपस्या प्रारंभ करें, और फिर जो नियम हमें भक्ति में दिए गए हैं उसको कड़ाई से पालन करने का संघर्ष करें। कड़ाई से पालन नहीं भी कर पा रहे तो संघर्ष करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा जो संघर्ष हो वो प्रामाणिक हो, हमारी इच्छा प्रामाणिक हो। जैसे हम दृढ़ता चाहते हैं लेकिन दृढ़ता आ नहीं रही है, कोई बात नहीं, हम संघर्ष कर रहे हैं, एक दिन आ जाएगी, लेकिन हम संघर्ष ही नहीं कर रहे हैं दृढ़ता लाने के लिए, या हमारी इच्छा नहीं है, हम नियम पालन कर रहे हैं लेकिन दृढ़ होने की इच्छा नहीं है, अगले जन्म में जाएंगे भगवान के धाम, अभी तो हो नहीं सकता, नहीं, हमारी बड़ी तीव्र इच्छा है, संघर्ष कर रहे हैं, हमें पता है हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, हमारे अंदर बड़े दुर्गुण हैं, हमारे अंदर वासनाएं हैं, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष हमें दृढ़ता तक ले जाएगा, और अंततः हमें भगवान के और भगवान के भक्तों के प्रति आदर का भाव बनाए रखना चाहिए। दृढ़ता लाने के लिए उनकी कृपा बहुत आवश्यक है, तो हमें याचना करनी चाहिए भगवान से कि माया बहुत शक्तिशाली है और मैं बहुत कमजोर हूं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। लेकिन आपके लिए माया शक्तिशाली नहीं है, मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, माया बहुत शक्तिशाली है, मैं बहुत कमजोर हूं, आपकी शरण में आया हूं, आपकी शक्ति है माया, बचाइए मुझे, तब हम दृढ़ता को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट,
अहिल्या को पत्थर बनने का शाप मिला, इंदु को क्या शाप दिया?
अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया, इंद्र को क्या श्राप दिया? क्योंकि इंद्र ने अपनी जनेंद्रियों का गलत उपयोग किया था, इसीलिए श्राप दिया कि उसकी जनेंद्रियां ही गिर जाएं, वो उनके विहीन हो गया इंद्र, तो वो श्राप मिला, और आगे चलकर कथा है कि उसका ऑपरेशन करना पड़ा और एक प्राणी से उसकी जनेंद्रियां लेकर लगाई गई, ये रामायण में वर्णन आता है, वाल्मीकि रामायण में। और क्या है प्रश्न? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान सामने हैं और सब लोग शिव जी को जाके प्रार्थना करें, अरे आपके बिना कौन रक्षा कर सकता है, आप ही आइए, आप विष पीजिए, और भगवान भी खड़े हैं साथ में ऐसे नहीं वो नहीं है, और उन्होंने ही कहा, जब सबने देखा भगवान की और अब क्या करें, बोले चलो सब शिव जी के पास जाते हैं। अच्छा चलिए, सब चल दिए। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? जब वो स्वयं वहां उपस्थित थे, आचार्यों ने समझाया इसको कि भगवान वहां उपस्थित होते हुए भी शिव जी को क्यों बुलाया गया। पहला कारण, भगवान अपने भक्त का हमेशा गुणगान कराना चाहते हैं, और इस लीला में भगवान बहुत कुछ कर चुके थे, सारा वो पर्वत से उठाने से लेकर नीचे बनना सब हो चुका था, तो भगवान ने कहा भी कुछ और भी कर, कोई और को भी करने दो। लेकिन प्रमुख कारण, भगवान शिव जी का गुणगान करवाना चाहते थे, इसीलिए वो खुद गए। तो भगवान और भक्त के बीच में ये एक प्रतिस्पर्धा चलती है, भक्त चाहता है भगवान का गुणगान हो और भगवान चाहते भक्त का गुणगान हो। श्रील प्रभुपाद ने चाहा कि कृष्ण का गुणगान हो सारे जगत में, और वो केवल चाहते रह गए और वो हुआ भी, लेकिन कृष्ण ने साथ साथ उनके उनका गुणगान भी करवा दिया। तो एक भक्त और भगवान में प्रतिस्पर्धा होती है, तो शिव जी का गुणगान करवाना चाहते थे, इसीलिए भगवान ने शिव जी को चुना। कि किस तरह, ऑन रहने देना लाइट, अभी प्रोग्राम चल रहा हो तब नहीं बंद करना चाहिए। तो उन्होंने उस लिए शिव जी को चुना कि वो जाकर विष पिए, उनकी महानता दिखलाने के लिए, अपने भक्त एक वैष्णव कितना महान होता है ये दिखलाने के लिए उन्होंने चुना। जैसे बलि महाराज से जाकर उन्होंने याचना की, भिक्षा मांगी, क्या जरूरत थी भिक्षा मांगने की, ऐसे ही उनको ले सकते थे सब कुछ, दिखलाने के लिए कि देखो मेरा भक्त कितना महान है, वैष्णव कितने महान होते हैं। महाराज चित्रकेतु को असुर बनवा दिया पार्वती जी के द्वारा, क्या जरूरत थी, जब उनको तो दर्शन हो चुके थे अनंत देव के, तब उनको फिर श्राप दिलवा दिया, क्या जरूरत थी, दिखाने के लिए कि देखो मेरा वैष्णव भक्त कितना महान होता। इसीलिए शिव जी को उन्होंने दिलाया कि देखो वैष्णव कितने महान है, जहर पीने के लिए तैयार है आपके लिए। यस आगे बढ़े। दिति की तपस्या वैसे ही भंग हो गई थी, तो उसको गर्भ में मारने की क्या जरूरत थी, तपस्या भंग हुई थी लेकिन बालक तो नहीं मरा था, बालक तो था गर्भ में, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया था तपस्या का दिन, तो इंद्र ने सोचा कि बालक तो है, तो अभी अब तपस्या से अभी थोड़ी सी दूषण हुआ है, तो अभी चांस है मैं मार दूं, कहीं ठीक से आ गया बाहर तो क्या करेगा। इंद्र इतना भयभीत था, इसीलिए वो चांस नहीं लेना चाहता था, कंस ने तो ले लिया था, इंतजार किया, इंद्र चांस नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए वो वहां थे उनके साथ में, इतना सेवा कर रहे थे, सेवा के लिए नहीं गए थे वो वहां पर, वो तो चांस ढूंढ रहे थे कि कहां पर है, तो जैसे ही मिला उन्होंने मार दिया। उनको पहले मिला होता तो पहले मार देते, मगर जब मिला नहीं। और क्या प्रश्न है? हाँ, अध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण में अलग अलग वर्णन है, तो ये कैसे होता है? इसको कल्प भेद कहते हैं। कल्प भेद का अर्थ है कि ये लीलाएं ब्रह्मा जी के हर दिवस में होती हैं, हर दिवस में रामचंद्र जी आते हैं, लीलाएं होती हैं, लेकिन लीलाओं में थोड़ा सा भेद होता है। जैसे इस बार आए तो रावण को जाकर लंका में मारा, कभी आए थे तो जाकर चाइना में मारा था, तब रावण चाइना में था ड्रैगन के रूप में, तो भगवान ने वहां मारा था उनको, आज भी वो लोग ड्रैगन को वर्शिप करते हैं। तो ऐसे लीलाओं में भेद होता है, लीलाएं वही होती हैं, मारेंगे वही रावण को, मगर रावण लंका की जगह चाइना में रहता था, तो वही हुआ अहिल्या पत्थर की बनी, या तो क्यों दोनों का अलग अलग वर्णन है, अलग अलग कल्प का वर्णन है, एक कल्प में ये हुआ होगा, वो कल्प में वो हुआ होगा, उसको कल्प भेद कहते हैं। कितने प्रश्न है? एक। हाँ,
इंद्रदेव के गलत कामों के बावजूद इंद्र भगवान को इतने प्रिय क्यों हैं?
इंद्र के गलत कामों के बावजूद भगवान को इतने क्यों प्रिय हैं इंद्र? क्योंकि इंद्र भक्त है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कृष्ण के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं इस ब्रह्मांड को चलाने की, अर्थात देवताओं को अलग अलग विभाग दिए गए हैं, तो वो सब जिम्मेदारी लेते हैं। हम लोग जो इंद्र का ज़्यादातर वर्णन पढ़ते हैं, वो एक भाग है इंद्र का, इंद्र है नहीं वैसे पूरे, वो एक भाग है उनके चरित्र का। लेकिन देवलोकों में क्या होता है, सतत कीर्तन चलता है, हरि नाम का कीर्तन चलता है। इंद्र खुद मृदंग बजाते हैं, बहुत सुंदर मृदंग बजाते हैं, इंद्र मृदंग बजाने में एक्सपर्ट है। जब भी कीर्तन होता है कृष्ण का तो तुरंत मृदंग लेके तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पापी दुराचारी भोगी व्यक्ति है और भगवान, वो भगवान के बहुत महान भक्त हैं, भले ही पूर्ण शुद्ध नहीं है, मिश्रित मिश्र भक्त हैं, लेकिन फिर भी भक्त हैं। दूसरा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं उनके लिए, इतनी टेंशन लेते कोई, अभी हम लोगों को छोटा सा घर चलाना होता टेंशन हो जाती है, मंदिर चलाना होता टेंशन, ये पूरा ब्रह्मांड चला रहे हैं वो, मतलब एटलीस्ट ब्रह्मांड नहीं तो कम से कम पृथ्वी और स्वर्ग तक का तो राज्य वो देख ही रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ हो रही है। देवताओं के राजा हैं तो वर्षा हो रही है कि नहीं, सूर्य का किरण आ रही है कि नहीं, हवा चल रही है कि नहीं, ये सब उनको देखना है व्यवस्था, तो कोई छोटी बात तो नहीं है, तो इसीलिए उसको भी करते हैं। और क्योंकि वो भक्त हैं इसीलिए भगवान उनके भाई के रूप में प्रकट भी हुए हैं, वामन देव के रूप में, और उनसे भोग स्वीकार भी करते हैं। तो इसीलिए हमें इंद्र की एक तरफ के चरित्र को देखकर, एक तरफ के कार्यों को देखकर हमें उसके बारे में निर्णय नहीं ले लेना चाहिए कि वो ऐसे ही व्यक्ति हैं। उनके अन्य कार्यों को देखिए, यानी हमने अगर उनके 10% कार्यों को देखा है तो 90% कार्यों को नहीं देखा है, जहाँ वो भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान को भोग अर्पण करते हैं, भगवान के लिए सेवाएँ करते हैं, भगवान से प्रार्थनाएँ करते हैं, वो सब वर्णन भी इंद्र का है। और इसीलिए इंद्र को वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। और अपने भक्त इंद्र का अहंकार, एक व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए उन्होंने अपने सारे ब्रजवासियों को खतरे में डाल दिया था, इतना प्रेम है भगवान को इंद्र से, गोवर्धन लीला में। एक उसका अहंकार तो तोड़ना था, बस उसको ठीक करना था, उसके लिए सारे ब्रजवासियों को लगा दिया, चलो एक भक्त को वापस लाना है, ये भगवान का प्रेम है। ठीक है, और कोई प्रश्न है?
ऐसा भी सुना है कि स्वर्ग लोक में कीर्तन वगैरह मतलब फैसिलिटी होती है कि करते नहीं ऐसा करके?
ओ बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा स्वर्ग में जितना कीर्तन होता है हम लोग तो सोच ही नहीं सकते। स्वर्ग में बहुत कीर्तन, ये जो गंधर्व इत्यादि हैं, और इसका प्रमाण क्या है, हम कैसे कह सकते हैं, हम कोई कल्पना से या अपने मन से नहीं कह रहे हैं, नारद मुनि ने इसको बताया। नारद मुनि जब अपने पूर्व जन्म की कथा कहते हैं, जिसमें वो उपभर्ण नाम के गंधर्व थे, और उसमें वो बताते हैं कि उनको हरिनाम में ज़्यादातर हरिनाम के लिए वो जाते थे करने, एक जगह भगवान का गुणगान होना था हरिनाम संकीर्तन, और उन्होंने जाके देवताओं का गुणगान किया, तभी ऋषि मुनि ने शाप कर दिया, जाओ तुम देवलोकों में रहने लायक नहीं हो, जाओ दासी पुत्र बन जाओ। तो वहाँ पर तो सतत कीर्तन चलता रहता है, ये स्वयं नारद मुनि ने बताया है। ब्रह्मा जी आज हम लोग सुबह पढ़ रहे थे भागवत में, क्या कहा उन्होंने कि ब्रह्मा जो कंस के जो सहायक थे, जब बातचीत कर रहे थे तो क्या कहा, डरने की जरूरत नहीं है, इंद्र की तो शक्ति नहीं है, शिव तो वो तो चला गया वन में, और ब्रह्मा वो तो हमेशा ध्यानमग्न रहता है, ध्यानमग्न रहते तो क्या करते ध्यानमग्न, ब्रह्मा जी के भी युग वहां पर कीर्तन चलता रहता है सतत। तो ब्रह्मा जी सतत कीर्तन करते हैं अपने लोक में, पर थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पर आकर थोड़ा सा मैनेजमेंट करके चले जाते हैं वापस अपने लोक में, तो ब्रह्मा जी भी व्यस्त। तो ऐसा नहीं कि देवलोकों में, हाँ ये कहा गया है कि क्योंकि देवलोकों में इतना भोग है, वहाँ पर शुद्ध भक्ति करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि इतने भोग उपलब्ध है और वहाँ कोई रोक टोक नहीं है, शराब पीने के लिए रोक टोक नहीं है, कुछ भी करने के लिए रोक टोक नहीं है, तो इस कारण से भक्ति करना कठिन हो जाता है। लेकिन ये एक नहीं है कि वहाँ हरिनाम नहीं होता, वहाँ तो सतत चलता है, हम लोग केवल नहीं सुनते, क्योंकि हम लोग एक ही तरह की चीज़ सुनते हैं। देवताओं का वर्णन आते ही हम लोग को सुरा याद आती है, अप्सरा याद आती है, नंदन कानन वन याद आता है, हमको यही याद आता है क्योंकि हमारी चेतना उसी में लगी हुई है, तो हम लोग को वही याद आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर कीर्तन भी होता है भगवान के नाम का। लेकिन आप इच्छा मत कीजिए कि वहाँ जाके देख कर आते हैं, क्योंकि आप कीर्तन नहीं देखोगे, फिर कुछ और देखकर आ जाओगे।
तो फिर वहां पे जो रहते रहने वाले वो डायरेक्ट भगवत धाम वहां से जा सकते हैं क्या?
वहां पे रहने वाले वहां से भगवत धाम जा सकते हैं, एज ए जनरल रूल नहीं जाते हैं, मना नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जा सकता, नियम है ऐसे जनरल, क्योंकि इतने भोग हैं वहां पर और सीधे वहां से भगवत धाम जाना उनको कठिन होता है, इसलिए वो प्रार्थना करते हैं देवता कि हमें जन्म दीजिए मनुष्य के रूप में भारत भूमि में, ताकि हम लोग तपस्या करके जा सकें। तो ऐसे कई जगह पर वर्णन है, जैसे जब पृथु महाराज वो भगवान वापस जा रहे थे धाम में, तो उस समय देवता बैठे देख रहे थे, बोले धिक्कार है हम लोगों को, हम लोग देवता बने बैठे हैं यहाँ पर, क्या लाभ है, ये देखो भगवान के धाम जा रहे हैं। तो उसका अर्थ यह है कि साधारणतः वो लोग वहां से नहीं जाते, लेकिन ऐसे रूल नहीं है कि वहां से जा ही नहीं सकते, भगवान कहीं से भी ले, नरक से ले जा सकते हैं गोलोक, उसमें क्या प्रॉब्लम है भगवान के लिए, लेकिन साधारण रूल है कि वो नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? उसका कारण ये है कि बहुत भोग वहाँ उपलब्ध हैं, भोगों में पड़कर उनके लिए भक्ति करना तपस्या करना कठिन हो जाता है, इसीलिए उनके लिए छोड़िए हमारे लिए तपस्या करना कठिन हो जाता है, जबकि भोग अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, हम लोग थोड़े बहुत भोग में ही, वो बदबू आती है शराब में, अब क्या बोलते हैं उसको, काजू से बनती है कुछ एक शराब है, उसमें इतनी बदबू आती है ऐसा लगता है कि गटर का पानी उसमें है, लेकिन लोग उसको पीकर आनंद लेते हैं जगत में, हमारे लिए वही आनंद बहुत है हमें भगवत धाम जाने से रोकने के लिए, और फिर वहां का जो आनंद है वो तो आप सोचिए क्या होगा। तो इसलिए साधारणता नहीं जाते हैं वहां से, वे लोग तपस्या के लिए नीचे आकर तपस्या करके जाते हैं। और कोई प्रश्न है किसी के स्वर्ग के अलावा? हाँ जी,
गुरु के प्रति प्रेम कैसे जागृत हो?
सबसे पहले गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयास करें, दूसरा गुरु के वचनों को, गुरु के प्रवचन को सतत सुने। हम लोग गुरु के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन जब YouTube पे जाते हैं तो हम बाकी सब चीज देखते हैं, गुरु के प्रवचन नहीं सुनते हैं, कहां से प्रेम उत्पन्न होगा? तो हमारा प्रेम तो कोरोना के प्रति ही उत्पन्न होगा, दिन भर वही सुन रहे हैं, तो और कहाँ से उत्पन्न होगा गुरु के प्रति हमारा प्रेम? तो पहली चीज है कि गुरु के निर्देशों का पालन करें, दूसरी चीज है गुरु के प्रवचनों को नित्य सुने, उनकी वाणी सुने, वाणी जाएगी हृदय में तब प्रेम उत्पन्न होगा, तीसरी चीज उनके अर्थात उनके आंदोलन में, जो भी उनके आंदोलन, जैसे इस्कॉन आंदोलन है, कई इस्कॉन में कई गुरु हैं तो उन सबका ये आंदोलन है, तो उसके आंदोलन में सहयोग की भावना से रहते हुए, हरेक से सहयोग करते हुए हम ऐसे कार्य करें जिनसे हमारे गुरु का नाम बढ़े, हम ऐसे कार्य करें जिससे हमें ये पता चले कि आज हमने ये कार्य किया है से हमारे गुरु निश्चित प्रसन्न होंगे। तो गुरु किन कार्यों से प्रसन्न होते हैं? गुरु प्रसन्न होते हैं, हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, गुरु प्रसन्न होते हैं जब हम वो कार्य करते हैं जो कृष्ण के निकट जाने के लिए हैं। तो इसलिए गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमें, या गुरु से प्रेम बढ़ाने के लिए हमें उनके प्रवचनों को सुनना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, उनके आंदोलन में सहयोग से रहकर भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम उनसे, और बारंबार उनके विषय में सुनना भी चाहिए। कभी कभी हम लोग ये भूल जाते हैं, केवल व्यास पूजा के दिन सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, जाते हैं इतने लोग गुणगान करते हैं, वाह हमारे गुरु महाराज ऐसे, हमारे गुरु महाराज ऐसे हैं, और बाकी साल भर पता भी नहीं रहता कहाँ हैं गुरु महाराज। तो सुनना चाहिए उनके विषय में, ताकि उनके विषय में सुनकर, उनसे सुनकर हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम बढ़ सके, और साथ साथ हमें उन्होंने जो प्रारंभ में इस संस्था में अपना योगदान दिया है उसको भी सुनना चाहिए। क्या किया हमारे गुरु ने प्रारंभ में, कैसे उन्होंने मेहनत की, क्या, क्योंकि हम लोग आज जब हम अपने गुरु को देखते हैं तो क्या देखते हैं, गुरुजी बैठे हैं, बड़े आसन है और सब लाकर दे रहे हैं, सब सुविधाएं हैं, हम वही देखते हैं, लेकिन हमें वो सुनना चाहिए कि उन्होंने इस आंदोलन के प्रारंभ में क्या किया, कैसे अपना योगदान दिया, कैसे अपने जीवन को खतरे में डाला, प्रभुपाद की सेवा के लिए, प्रभुपाद के आंदोलन के लिए हमें वो सुनना चाहिए, गुरु के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। हम सुनते नहीं हैं, रेगुलर सुनना चाहिए क्या किया उन्होंने। जैसे किसी ने मान लीजिए अपने प्राण खतरे में डाले हैं, किसी ने बड़ी कड़ी मेहनत की है, किसी ने दिन दिन भर जाकर उनके लिए सेवा की है। जैसे हम लोग कल भी हम चर्चा कर रहे थे एक भक्त की, जिसने जाकर भिक्षा मांगी एयरपोर्ट पर, मंदिर के लिए रेंट नहीं था। ऐसी चीजें हमें सुननी, हमारे गुरु ने क्या किया है, प्रेम बढ़ जाएगा। और उतना ही नहीं, आज क्या कर रहे हैं हमारे इस संस्था के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि उन्होंने उस समय कर दिया, बैठ गए कि हमारा बस बहुत हो गया, हमारा कोटा पूरा हो गया, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, वो नहीं है। आज भी वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वो भी जानिए कि वो क्या कर रहे हैं, प्रेरणा मिलेगी, प्रेम बढ़ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।